ओम शांति। आज हम सभी के बीच आदरणीय गीता दीदी जी पधारे हैं। हम सभी एक हाथ की ताली से दीदी जी का स्वागत करेंगे। वैसे तो आप पहले दिन ही दीदी जी से मिल चुके हैं, उनका परिचय भी आपको मिला है, फिर भी कुछ विशेष बातें हैं दीदी की जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। दीदी जी 14 वर्ष की आयु में 1969 में ही बाबा के ज्ञान में आए पूरे परिवार सहित, और आप अपने विद्यार्थी जीवन में भी बहुत ओजस्वी छात्रा रही हैं। साउथ गुजरात बोर्ड की मैट्रिक एग्जाम में आप पूरे साउथ गुजरात में प्रथम स्थान प्राप्त किए हुए हैं, तो जोरदार ताली हो जाए दीदी के लिए। और वैसे ही आप इस रूहानी शिक्षा में भी नंबर वन स्टूडेंट हैं। हम देखते हैं मधुबन में ही दीदी रहते और हम भी यहाँ रहते हैं, तो हम उनकी जीवन शैली देखते हैं, उनकी दिनचर्या देखते हैं, जैसे एक रेगुलर स्टूडेंट होता है, नंबर वन स्टूडेंट होता है, वही हम आप में देखते हैं। सुबह से लेकर रात तक जो बाबा ने अमृत वेले से जो दिनचर्या बताई है उन पे आप एक्यूरेट चलती है, और हम सभी बहनों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में आगे रहती है, हमारी छत्र छाया के रूप में हमारे साथ है। तो ऐसे आदरणीय दीदी जी को हम फिर से स्वागत करते हैं। और आज आपका विषय है पूर्वज स्थिति से सेवा, सुख दो सुख लो। तो इस विषय पर आज दीदी हम सबके आगे प्रकाश डालेंगे, आदरणीय गीता दीदी जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबको अच्छा लग रहा है भट्टी में? हाँ, भाइयों को और माताएं बहने, साइलेंस में रहना पसंद आता है? हाँ, क्योंकि हमारी ओरिजिनल स्टेज तो शांति की ही है। बेशक इस दुनिया में कारोबार करने के लिए बाबा ने हमें ऑर्गन्स दिए हैं, बोलने के लिए मुख दिया है, परंतु ज्ञानी तो आत्मा बनकर मुख का उपयोग करते हैं तो स्वतः ही आवश्यक बोलते हैं, बाकी अपनी शांति की स्थिति में रहते हैं। जैसे आज बाबा ने कहा, कौन सी पॉइंट बाबा ने कही शांति के बारे में? बाबा ने कहा ना, कछुआ कि शरीर निर्वाह के लिए घास खाता है और फिर शांत बैठ जाता है। तो हमें भी जो जरूरी कारोबार है तो उसके लिए बोलना है, फिर शांत रहना है। अनावश्यक बोल बोल करने से हमारी एनर्जी खत्म होती है, पता है? ज्यादा बोलने से भी शक्ति खर्च हो जाती। ज्यादा बोलने वाला जिस दिन घर में नहीं होगा, लगेगा आज फैक्ट्री बंद है, कोई आवाज नहीं। बाबा ने सिखाया है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, सारयुक्त बोलो। वाणी वरदानी बननी चाहिए। हमारा रोल क्या है संगम युग में, अपने आप को देखो। संगम युग में हमारा रोल क्या है? एक तो हम लोगों का समर्पित रूप से रोल है, आप सबका ट्रस्टी के रूप से रोल है। अब तो नहीं कहेंगे ना हम गृहस्थी हैं, ऐसा कहेंगे आप? हाँ नहीं, गृहस्थी माना फंसा हुआ, अनेक बंधनों से बंधा हुआ, पर अब आप सभी ट्रस्टी हैं। राजा जनक की तरह आपका पार्ट है, तो ये रोज याद रखना है। ट्रस्टी और समर्पित में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, सिर्फ हमारे लौकिक कर्म बंधन समाप्त है, हमारी वो साइड क्लियर है, क्योंकि हम कुमारियां हैं इसलिए हम समर्पित हो गए। और आपको लौकिक संबंध है इसलिए बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर पालना करो। मालिक बाबा है ना? जब मालिक बन जाते हैं तो फीलिंग आती है ना कि मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, तो दुख की फीलिंग आती है। हमें ये याद रखना है हम सेंटर में सेवा में निमित्त हैं, तो आप घर में रहते निमित्त बाबा के तरफ से निमित्त बनकर परिवार की पालना करते हैं। निमित्त भाव से करना है, आप अपनी तरफ से अच्छे से अच्छी पालना देंगे, फिर हर आत्मा का अपना भी रोल है, हर आत्मा के अपने भी स्वभाव संस्कार है, वो पूरा ज्ञान ले ना ले, हर आत्मा का अपना रोल है ना। तो आपको दुख नहीं होगा कि मैंने इतनी पालना दी, इतना अटेंशन खिंचवाया, इतना बाबा की याद में रहकर भोजन बना के खिलाया, पर ये बाबा के नहीं बने। चलो आपने तो अपना रोल प्ले किया, बाकी उनका पार्ट है। तो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र योगी बनकर बाबा की श्रीमत पर परिवार को चलाना, तो आप ट्रस्टी हैं। आप सबके ऊपर तो बाबा बहुत खुश है, क्योंकि बाबा चाहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल बनो, वो आपने करके दिखाया। पवित्र योगी जीवन बना के दिखाया, सेवा भी करते हैं, क्योंकि इसमें हम आत्माओं का कल्याण है, उन्नति है, हमारा ही जीवन बाबा महान बनाते हैं। परंतु जब हम पक्के योगी ट्रस्टी बन जाते हैं फिर हमारा और आगे बाबा जिम्मेवारी हमें देते हैं कि आपको सिर्फ अपना कल्याण नहीं करना है लेकिन विश्व की आत्माओं की भी सेवा करनी है। तो बाबा ने पूर्वज का रोल दिया कि आप सभी पूर्वज हैं सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं के। हम देवता घराने की आत्मा है। संगम युग में जब हम पवित्र योगी बनते हैं और श्रीमत पर मन वचन कर्म तन मन धन चलाते हैं तो सतयुग में उच्च देव पद प्राप्त करते हैं। वो पूज्य स्थिति है। पूज्य सतयुग और त्रेता युग में और द्वापर से हम तो पुजारी बन जाते हैं ना, पर हमारी सतयुगी पूज्य देव पद की स्थिति का यादगार द्वापर में भक्ति में बनता है और उन देवी देवताओं से लोग श्रद्धा भावना से वरदान पाते हैं, दुआएं पाते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं, क्योंकि भावना का भी देखो फल मिलता है। परंतु संगम युग में हम उच्च पद को पाते हैं, योग्य बनते हैं, फिर हमारी पूर्वज रूप में सेवा शुरू होती है कि केवल अपना कल्याण नहीं, शुरू से बाबा ने स्व सेवा और विश्व सेवा, स्व कल्याण और विश्व कल्याण का कार्य दिया है। तो हमें सभी आत्माओं को जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, जो हमारे संबंधों में आते हैं, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं, कामकाज करते हैं, उन सभी आत्माओं को पूर्वज बनकर हमें सुख देना है। तो देखो जो हमारे इस जन्म में संबंधी बनते हैं, परिवार में आते हैं, जिनके साथ सबसे ज्यादा हमारे हिसाब किताब होते हैं वो परिवार के रूप में हमारे साथ आते हैं। दुनिया तो हमें अच्छी लगती है ना, परंतु खिटपिट कहाँ होती है, परिवार में ही होती है ना, जो हमारे नजदीक संबंध में आते हैं, क्योंकि वो हिसाब किताब से आते हैं, वहां ही संस्कारों का टकराव होता है। परंतु बाबा ने हमें सिखाया है कि हमें अपने श्रेष्ठ संस्कारों में रहना है। हर एक आत्मा अपने अपने संस्कार अनुसार चलेगी, लेकिन मुझे कैसे चलना है, उनके व्यवहार के आधार पर मुझे व्यवहार नहीं करना है कि भाई उसने दो बोला तो मैं चार बोलूंगी, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगी, है ना। ज्ञान नहीं है तो हम रिएक्ट करते, परंतु रिएक्ट करने में हिसाब किताब बनते। हम जब गुजरात सौराष्ट्र में थे सेवा में, ऐसे कई गांव थे जो हमने देखे पीढ़ी दर पीढ़ी एक दो परिवारों के बीच वैर चलते ही रहते। वो उनके दो को मारेंगे, ये चार को मारेंगे, ये आठ को मारेंगे, ये सोलह को मारेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी वैर चलता ही रहता। अब इसमें क्या फायदा है? खुद के भी कर्म बुरे हुए, खुद भी दुखी, वो भी दुखी। चलो कोई जन्मों के हिसाब से वो वैर दुश्मनावट शुरू हुई, पर हमें वो बुरे हिसाब किताब का चक्र चलाते ही रहना है या उससे कहीं रोकना है, खत्म करना है। उसको कहते हैं विशियस साइकिल। ये विशियस साइकिल चलता ही रहेगा, पर अगर हम बाबा के बच्चे ज्ञानी आत्मा हैं, योगी आत्मा हैं, तो बाबा ने हमें क्या सिखाए? बाबा तो कहते हैं ना, बदला न लो, बदल कर दिखाओ। हम अपनी तरफ से रिएक्ट न करें, हम फुल स्टॉप लगाएं। और बाबा कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना। पारिवारिक संबंधों में भी ये चलता ही रहता है, एक दूसरे अनबन, मन मुटाव, बोलना नहीं, एक दो के बारे में ग्लानी ही करते रहना। तो हमारे बुरे हिसाब का चक्र चलता ही रहता। लेकिन अब बाबा ने हमें बहुत ऊंचा महान बनाया। अब हम साधारण गृहस्थी नहीं हैं, हम पवित्र योगी महान आत्माएं हैं। तो अगर इन बुरे हिसाब किताब से निकलना है तो बाबा कहते हैं अपने तरफ से पहले मन से माफ कर दो। जो कुछ हुआ ड्रामा, ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा एक्यूरेट है, ये तो निश्चय है ना सभी को, हा? ड्रामा एक्यूरेट है। मुझे इस हिसाब को बढ़ाना नहीं है। पहले अपने आप को मन से तैयार करो, रोज कितना ऊंचे टाइटल स्वमान बाबा हमें देते, कितना नशा चढ़ाते हैं कि हम कौन हैं, हम साधारण नहीं हैं, हम महान आत्माएं हैं, सत्य ज्ञानी आत्माएं हैं, सत्य ज्ञानी आत्माएं। दुनिया में जो है वो तो दुनियावी पढ़ाई, भौतिकता, प्रकृति जगत का ज्ञान और भक्ति में शास्त्रों का ज्ञान, पर हम सत्य ज्ञानी, हम डायरेक्ट परमात्मा योगी आत्माएं, वो तो बिचारे अपने अपने इष्ट से बुद्धि लगा के बैठे, धर्मात्माओं से, महात्माओं से, उनसे योग लगा के बैठे। हमारा योग तो डायरेक्ट परमात्मा से है। हम श्रेष्ठ धारणाओं वाले हैं, बाबा के बच्चे बने, हम पवित्र बने, ब्रह्मचर्य की धारणा की। बाबा आए ही किस लिए हैं? बाबा क्या कहते हैं, मेरा मुख्य कार्य कौन सा बताओ? पतितों को पावन बनाने आए। तो हमारा बाबा विश्व को, सर्वात्माओं को पावन बना रहा है, हम उनके बच्चे हैं, हमारा कर्तव्य है हम स्वयं पवित्र बने और आत्माओं को भी पवित्र बनाएं। इस अंतिम जन्म में बाबा हम बच्चों से कौन सा सहयोग चाहते? पवित्र योगी जीवन का सहयोग चाहते। तो हम ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, हम आजीवन अन्न शुद्धि का नियम पालन करते, भक्ति की तरह नहीं कि सोमवार है, गुरुवार है, उपवास है, एकादशी है, पूनम है, श्रावण मास, नहीं, पूरा जीवन अन्न शुद्धि का नियम पालन करना है, क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है ना। हम रोज अमृत वेले उठते हैं। योगी के लिए गीता में कहा है कि जब भोगी जागते हैं रात्रि के पहले दो प्रहर में, तब योगी सो जाते हैं। आजकल तो देखते हो ना, 12 बजे तक तो रात भी दिन जैसा लगता है। लोग टीवी देखेंगे, घूमते रहते हैं होटलों में, बाजारों में, और जब भोगी सोते हैं, बाबा कहते हैं ना 12 बजे के बाद, 2 बजे से सुबह 8 बजे तक भोगी सोते हैं, योगी जागते हैं। हम अमृत वेला उठते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं। हमारा लक्ष्य मजबूत है कि हमें अमृत वेले बाबा से मिलन मनाना है, दिल की हर बात बाबा से करनी। आपके नौकरी के, धंधे की, परिवार की, धन की, कोई भी बातें हैं, बाबा का बच्चा बनकर अमृत वेले मन ही मन बाबा को बता दो बस। अपने आप बाबा आपको डायरेक्ट टच करेगा, या मुरली में आपको जवाब मिलेगा। बाबा की मदद मिलती ही है। हमें कोई आत्माओं को सुनाने की जरूरत ही नहीं। बाबा को बता दो और निर्संकल्प हो जाओ। आपको ही शुभ विचार आएगा, टच होगा या मुरली से बाबा का जवाब मिल जाएगा। उस दिन की मुरली में जवाब आ जाएगा। इसलिए हम रोज अमृत वेले उठते हैं। योगी जीवन की यही विशेषता है। बाकी तो बाबा कहते हैं 5 बजे से भक्तों की लाइन शुरू हो जाती है, फिर बच्चों का नंबर नहीं लगता है, फिर भक्तों की लाइन शुरू। बच्चों के मिलन का समय बाबा ने कौन सा दिया? 2 से 5 के बीच में। लक्ष्य रखो, कोई भी 1 घंटा बाबा की याद में बैठना है। खुद भगवान हमारे लिए बैठते हैं। बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था, भोलानाथ बाप अपने सारे भंडारे खोलकर बैठते। उस समय भगवान को जो रिझाना चाहो, खुश करना चाहो, मनाना चाहो, मना सकते हैं। तो अवश्य आप सभी ने योगी पवित्र जीवन अपनाया है तो दिनचर्या भी एक्यूरेट बनाई होगी। रात को 10 बजे सो जाओ, अमृत वेले 4 बजे आराम से आप उठ सकेंगे। फिर भले दिन में 1/2 घंटा 1 घंटा आराम कर लो, जब भी जैसा अनुकूल। मैं अपने लौकिक पिताजी की बात करूं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, उनको 10:45 निकल के 11 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, तो वे 10:30 भोजन कर लेते थे और फिर 15 मिनट सो जाते थे। 15 मिनट में भी डीप स्लीप, उनके नाक बोलते थे, और 10:45 खड़े होके तैयार होके ऑफिस चले जाते। पर अमृत वेले जरूर उठते थे, क्योंकि उनको दिन में आराम नहीं मिलता था। कईयों का धंधा है, नौकरी है, उनको आराम दिन में नहीं मिलता है, तो क्या वो अमृत वेले नहीं उठेंगे? हाँ, आप रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जरूर उठो। और प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1/2 घंटा दिन में भोजन के बाद ब्रेक जब मिलता है 12 से 1 या 1 से 2, 1/2 घंटा भोजन करके 1/2 घंटा सो के फ्रेश होके उठ जाएंगे। आहार और निंद्रा, ये 2 चीज ऐसी है जितनी कम करना चाहे कम कर सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। रोज आप क्लास करते हैं। कई लोग आप लोगों को पूछते होंगे कि आपको कब तक ब्रह्मा कुमारी में जाना पड़ेगा, हाँ? इतने सालों से हम देखते हैं ये बहन जी, ये माता जी रोज डायरी पेन लेके जाती है क्लास कर। पर हम सबकी धारणा है जहां तक जिएंगे, क्या धारणा है, ज्ञानामृत पिएंगे। तो देखो इतनी ऊंची धारणाएं हम सभी ने की है, ये सामान्य नहीं है। लोग इसलिए कह देते हैं ना, भाई हम नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं ना। अमृत वेले उठने की बात तो लोग कहते हैं, अरे बाप रे आप लोग तो आधी रात को ही उठ जाते। पर ये बाबा के ज्ञान की शक्ति है जो आत्मा जाग गई है तो ये धारणाएं हो गई है। ये बाबा की शक्ति है, बाबा के ज्ञान की शक्ति है। तो जब इतनी ऊंची धारणाएं की है, हम भगवान के प्रिय बच्चे बने हैं, दिल तख्त नशीन बने हैं, तो हमें अपने को साधारण नहीं समझना है, इस ऊंचाई से कर्म करना है। फिर घर के जो भी आपके बेटे बेटियां बहू जो भी है, माता पिता दादा दादी भाई बहन, जो पूरा परिवार है, जो भी अंतिम जन्म के मित्र संबंधी है, जरूर कुछ उनके अच्छे कर्म होंगे तब तो आप योगी के साथ जुड़े हैं। वो हम योगियों के संबंध में वो आए हैं, तो हमें बाबा के तरफ से उन आत्माओं को सुख देना है। कम से कम हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें इतना नीचे नहीं उतर जाना है जो हमारा मन भी उनके लिए खराब हो जाए, हमारी वाणी बिगड़ जाए, हम अपशब्द बोलें, ग्लानी करें, निंदा करें। हमें इतना हल्का नीचा नहीं उतरना। ठीक है वो धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं, ठगी करते हैं, तो आप होशियार बन जाओ, न्यारे हो जाओ, पर भावना मन सा हमें शुभ बनना है, हमें रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि बताए ना हम कौन है, बाकी जन्मों में तो हम कोई महानता में नहीं स्थित रहे, जब भगवान हमें इतने ऊंचे रूप में स्थित कर रहे हैं तो हम साधारण हल्के नहीं बने। आप न्यारे बन जाओ, ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहो, पर भावना अच्छी, वाणी अच्छी। तो हमारे पूज्य और पूर्वज पद से हमें जो सुख देने की सेवा करनी है, परिवार से शुरुआत करें। हमारे जो भी अड़ोस पड़ोस मित्र हैं, हमारे गली मोहल्ले वाले हैं, जिनके साथ हमारे संपर्क संबंध है। हमें उनकी गलत बातें सीखनी नहीं है, पर बाबा की दी हुई अच्छी बातें, अच्छी धारणाएं, अच्छे गुणों से हमें उनसे व्यवहार कर। लगना चाहिए ये ज्ञानी आत्माएं, भाई कोई अनपढ़ गंवार ऐसा वैसा बोले, व्यवहार करे तो लोग समझ लेते हैं कि भाई वो अनपढ़ है, गंवार है। पर कोई पढ़ा लिखा गलत व्यवहार करे तो लोग कहेंगे ना कि भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम ऐसा अंट संट व्यर्थ गंदा क्यों बोलते हो, तुम तो शिक्षित हो ना, पढ़े लिखे हो, तुम्हारे में तो मैनर्स होनी चाहिए। तो बाबा हमें वो ही बात समझाते हैं कि तुम ज्ञानी तू आत्मा, रोज हमें कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, हाँ स्वयं भगवान हमें पढ़ाते, रोज सत्वचन हम पढ़ते हैं। तो हमारे मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। अज्ञान काल में भी घर में कोई बहुत शांत शीतल मितभाषी स्नेही आत्मा परिवार में आती है तो कहते हैं ना, हमारे घर में ये तो जैसे देवी आई। तो हम आत्माएं जिस लौकिक परिवार में रहते हैं उन सब आत्माओं से आप महान आत्मा है, योगी आत्मा है, श्रेष्ठ धारणा वाली आत्मा है। उन्हें अनुभव हो कि ये हमारे घर में सच्चे योगी हैं, ये सच्ची देवी है, देवता है। उनको लगे कि इनकी तपस्या और सत्कर्मों के बल से हमारी नैया भी पार हो जाएगी, हम भी इनके तप से हम भी तर जाएंगे। ये सर्टिफिकेट हमें लेना है। अपनी वाणी अच्छी, व्यवहार अच्छा और अपने वाइब्रेशन सच। रोज अमृत वेले योग के बाद 3 मिनट रोज अपने अपने लौकिक परिवार को वाइब्रेशन दो। इस अंतिम जन्म में जो भी मेरे मित्र संबंधी हैं, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, भगवान को याद करें, अच्छे संस्कारी बने, बाबा को पहचाने, बाबा के मददगार बने। वाइब्रेशन दो, क्योंकि जो भी माताएं हमारे अधर कुमार भाई हैं उस परिवार के रचयिता है, तो आपकी दुआएं तो चाहिए ना। जानते हो कलयुग अंत का समय है, स्वभाव संस्कार आजकल बिगड़ गए हैं, परंतु बाबा इसी कलयुग को सतयुग बनाने आया है और हम बाबा के मददगार साथी बच्चे हैं। तो हमारा कर्तव्य है दुआएं देना। फिर जो भी हमारा अलौकिक परिवार है, जो जो जिस सेंटर में जाते हैं, जिस पाठशाला में जाते हैं, जिस सब सेंटर में जाते हैं, जिस जोन सब जोन के हैं, अलौकिक परिवार में हमें अलौकिक बनकर चलना है। उसमें लौकिकता नहीं लानी है, कोई खास सखा सखी बन जाए ऐसे नहीं। हमारे लिए खास एक बाबा है, बाकी सारा विश्व हमारा मित्र है। अलौकिक परिवार में अलौकिक बनकर चलिए, भल अच्छे संस्कार वाले, अच्छी धारणा वाले, अच्छे सेवा भाव वालों का स्वाभाविक है आपस में ज्यादा बनती है, पर लौकिकता ना आ जाए ये अटेंशन रखना। और हमें इस अलौकिक परिवार में, चाहे सेंटर की समर्पित बहने और भाई हैं या क्लास में आने वाले भाई बहने हैं, हमें सबके लिए शुभ सोचना है, स्नेह और रिस्पेक्ट से चलना है, बाबा के कार्य में मददगार साथी बन के चलना है। बाबा ने हमें इकट्ठा किया है, कहां कहां से कौन कौन बाबा का बना है देखो। बाबा कहते हैं ना, वन वन की काठी इकट्ठी की है चंदन का वृक्ष बनाने के लिए। चंदन की तरह सुगंध फैलाएं, शीतलता दें। हम यहां लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। कितने भी वैरायटी संस्कार हो, मेरे हो या आपके हो, हमें मिलके निमित भाव से चल। हमारी दादियों ने हमारी पालना कैसे की, देखा है ना दादियों को, जिन्होंने दादियों को, कोई भी एक दादी को देखा हो वो हाथ ऊपर कर। बहुत भाई बहने जो अव्यक्त बाप दादा से मिले हैं वो हाथ ऊपर कर, वो भी है। जो नहीं मिले हैं वो हाथ ऊपर कर, वो भी काफी है। भल साकार रूप में, अव्यक्त पार्ट के रूप में नहीं मिले, परंतु ज्ञान नेत्र से तो परख लिया है ना, हाँ? मन की आंख से, ज्ञान नेत्र से तो बाबा को मिले हैं ना। बाबा के ज्ञान का वर्षा तो सबको मिला है ना, आज तक जो भी बाबा के बने। साकार मुरलियां, अव्यक्त मुरलियों का खजाना सबको अभी तक मिल रहा है। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें संस्कार मिला के चलना है। संस्कार मिलन के रास, हमें किसी के गुण अवगुण में नहीं जाना है। जब एक दो के अवगुण देखते हैं तो फिर मन में घृणा, नफरत रिएक्शन आता है। फलाना ऐसा है, इस सेंटर में ऐसा है, ये दीदी ऐसी है, वहाँ ये होता है। हम व्यर्थ की पंचायत करने नहीं आए हैं। हमारा अपना मन तो खराब हो गया ना, अवगुण देखा खुद ने, पर चिंतन व्यर्थ चिंतन किया तो आपकी मन की स्थिति तो बिगड़ गई ना, आपको क्या फायदा हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं सबके गुण विशेषता देखो, कोई भी आत्मा साधारण नहीं है, जरूर कोई विशेषता है। भगवान को पहचानने की विशेषता तो है ना, भूल अवगुण कमजोरियां देखते हैं, चित्त पर धारण करते हैं तो फिर ग्लानी निंदा शुरू हो जाती, घृणा नफरत आ जाता है। हमें अपनी अवस्था नहीं बिगाड़नी है, अपनी वाणी नहीं बिगाड़नी, हमें तो सबके लिए शुभ भावना दुआएं करनी है। जरूर बाबा ने चुना है, बाबा को पहचाना है, तो जरूर इनके द्वारा बाबा के कार्य में कोई सहयोग मिलना है, तभी तो बाबा ने अपना बनाया है। तो बाबा कहते हैं जब दूसरों के लिए सोचते हैं ये ऐसे हैं कैसे हैं वैसे हैं, उस समय हम खुद को भूल जाते हैं कि हम भी कैसे, हम भी तो परफेक्ट नहीं है ना, हमारे में भी तो कोई ना कोई कमी कमजोरी है, हमें भी कोई सहन कर रहा है, हमसे भी कोई एडजस्ट कर रहा है ना। उस समय हम स्व में स्थित नहीं होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं आपको आत्माओं की पंचायत करने की जरूरत नहीं है, आत्माओं को संपन्न और संपूर्ण बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया है, किसने लिया है, बाबा ने लिया है ना, मैं क्यों व्यर्थ सोच रही, कहीं तो किसी के भूल के पीछे पड़ जाते हैं, जब तक वो बेचारा ज्ञान से चला न जाए उनके पीछे पड़े रहते हैं, इतना वैर झेर करते हैं। क्यों भाई, भगवान ने वैर झेर किया, ब्रह्मा बाबा ने किया, दादियों ने किया, दीदियों ने किया, हम क्यों ऐसा करते हैं। हर एक के कर्म का हिसाब किताब और उनका फल तो हर एक को मिलना ही है ना, हम कौन होते हैं किसी के पीछे पड़ने वाले, क्यों हम ऐसा करते हैं, क्योंकि बाबा जैसा दया रहम कल्याण की भावना नहीं है। चलो ब्राह्मण बनने की हिम्मत तो की ना, इस कर्म क्षेत्र पर जो भी कर्म हम करेंगे फल मिलना ही है, हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं। इसलिए पूर्वज स्थिति से सेवा करनी है तो दया, रहम, कल्याण की भावना, क्षमा भाव, ये हमारे में होना चाहिए। हम तो सारे विश्व के पूर्वज हैं, क्योंकि सबसे पहले इस ड्रामा के खेल में कौन आते हैं? कौन आते हैं? हम देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। हमारे बाद इस्लाम, बौद्धी, क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, बाकी सब तो बाद में आते हैं ना। सबसे पहले हम आते हैं, इसलिए हम उनके पूर्वज, वो हमारे बाद आते हैं। तो संगम युग में बाबा के साथ हम सबका रोल है, इतने सुप्रीम सोल के साथ पार्ट प्ले करना। तो जितना भगवान महान है, प्यार का सागर है, दया का सागर है, रहम दिल है, सुखदाता है, उनके साथ रोल बजाने वाले हम भी तो ऐसे होने चाहिए। इसलिए अपने को बहुत ऊंची स्थिति में रखें तो हम सबको, लौकिक अलौकिक, जानते हैं नहीं जानते हैं, विश्व की अरबों आत्माओं को सुख देने का कार्य हम कर सकेंगे। इसलिए कहा जाता है योगी आत्मा प्रत्यक्ष परोक्ष, जानते हैं नहीं जानते हैं, सबके लिए कल्याणकारी होते हैं, सबके लिए। तो एटलीस्ट जिसको हम जानते हैं, जो हमारे संपर्क संबंध में है, उनको तो सुख देना ही है। और ये ड्रामा का नियम है, जो देंगे वो ही आपको मिलेगा। सुख देंगे सुख मिलेगा, प्यार देंगे प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे रिस्पेक्ट मिलेगा, सहयोग देंगे सहयोग मिलेगा। जो देंगे वो ही मिलेगा। इसलिए खुद भी पूरा ज्ञान स्वरूप रहो। ज्ञान स्वरूप नहीं रहेंगे, औरों के कड़े संस्कार व्यवहार से दुखी होते रहे। दुखी नहीं होना है। जिस क्षण हम दुखी होते हैं, हमारी पूरी अलौकिकता खत्म हो जाती है। हमारे चेहरे पर जो योगी जीवन का तेज है, वो खत्म हो जाता है, क्योंकि स्थिति ही बिगाड़ दी ना हमने। इस दुनिया में आप सेंसिटिव होकर इमोशनल होकर नहीं जी सकते। जो भावुक लोग हैं, सेंसिटिव माना संवेदनशील, हमें ऐसा कोमल नाजुक कमजोर नहीं रहना। कलयुग के अंत में तो सब पति तमो प्रधान पत्थर आत्माएं बन गई है। अगर आप सेंसिटिव बनेंगे, इमोशनल बनेंगे, तो बार बार हर्ट होते रहेंगे, घायल होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। नॉलेजफुल पावरफुल बनना है, ज्ञानी योगी बनना है, तो आप समझ सकेंगे कि वैरायटी संस्कार वाली आत्माओं का ये ड्रामा है। तो आप मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, ज्ञान युक्त वाणी और श्रीमत युक्त कर्मों से खुद भी सुखी हम बनेंगे, औरों को भी सुख देंगे। पसंद है ऐसा बनना? तो हाथ नीचे क्यों कर दिया भाई, पसंद है ना? लक्ष्य रखेंगे हम जरूर बन सकेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी जी का धन्यवाद करेंगे। कैसे करेंगे? बहुत अच्छी तरह से आपने हमें बताया कि किस प्रकार हम अपनी पूज्य और पूर्वज स्थिति को बनाए और उसके द्वारा सबको सुख दे और सुख ले भी।